So, text number 16.
हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है।
हाँ, वो ये फॉलो सब नहीं करेगा तो कहाँ जाएगा? देखो, स्टेप आपका जो है ना, मैप था उसमें योगा लैडर का, तो उसमें कर्मकांड था, उसके ऊपर कर्म योग था। अगर ये दोनों को फॉलो नहीं करेगा तो घूम फिर के वो कहाँ जाएगा? फिर से नीचे आ जाएगा। नीचे लास्ट कौन सा था? लास्ट वाला एनिमलिस्टिक पशु। कर्मकांड बताया, कर्मयोग बताया, लेकिन ये दोनों को फॉलो नहीं करेगा तो घूम फिर के वापिस उधर ही आ जाएगा। कहाँ? कर्मकांड, पशु, पशु तक पहुंच जाएगा। तो वो जो जीवन जीता है वो वेन या निरर्थक हो जाता है। नाउ अभी हम वो प्रिस्ट वाली बात आपको आगे करते हैं, उसके बाद फिर वील कंटिन्यू फर्दर, उसके कंटिन्यूएशन में। आपने वहां तक का तो सुना था, राइट? सो यस, सो कर्मकांड का यज्ञ का फॉलो करने वाला व्यक्ति जो होता है वो ग्रेजुअली अपनी इच्छाओं को शुद्ध करके वो भौतिक लक्ष्य के बदले आध्यात्मिक लक्ष्य के प्रति ट्रांसफर हो सकता है। तो वो अपनी वैदिक सिस्टम को फॉलो करेगा और परिणाम ये आएगा कि वो अपनी इंद्रियों को अनियंत्रित रूप से भोग कर रहा था, उसके बदले अब वो वेद की ऑथोरिटी को स्वीकार करने लगता है और अपनी इंद्रिय भोग को नियमित बनाया। किसके आधार पर? वेदों के आधार पर, कर्मकांड के आधार पर, समझे ना? अनियंत्रित भोग करने वाला था लेकिन उसने अभी वेदों को सीखा, तो हमने आपको बताया ना कि कुछ पृष्ठ बोलेगा ए, वो तो तुम नहीं कर सकते। अगर तुम्हें अगर आपको कश्मीर में जगह चाहिए तो ये नियम का पालन करना पड़ेगा, ये तपस्या करनी पड़ेगी। यू नीड टू गेट दिस, यू हैव टू फॉलो दिस। तो वो भी नियमित रूप से भोग करने लगा, नियमित रूप से भोग करेगा लेकिन नियम के आधार से। तो उसका उद्देश्य क्या था? प्रॉस्पेरिटी। अपने जीवन में वो प्रॉस्पेरिटी चाहता था। बाद में उसको पता पड़ा कि भविष्य की लाइफ में भी प्रॉस्पेरिटी हो सकती है, ऐसा हमने बताया ना। अभी इधर उधर की बात हुई, अगर किसी बोला कि मैं अमेरिका, यूरोप, इन सबसे अच्छा सुख अगर मैं तुम्हें दे दूं तो वो व्यक्ति सोच में पड़ गया। सो अगर उसको बताया कि मैं तुम्हें ऐसी जगह बता दूं कि जहां पर तुम्हें रोग नहीं आएगा या तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे लाभ मिल जाएंगे तो क्या होगा? यू आर मोर अट्रैक्टेड। जनरली हाउएवर, बाय एसोसिएटिंग विद द ब्राह्मण प्रीस्ट ही हियर्स अबाउट सैक्रिफाइस दैट विल अवॉइड हिम बर्थ ऑन द हायर हेवनली प्लैनेट्स। सो यहां पर तो क्या है, फैमिली मेंबर्स डाई, फैमिली मेंबर्स मर जाते हैं, फिर अकाल कई बार आ जाता है, चोर लुटेरे पैसा चुरा करके भाग जाते हैं और ये सब चीजें उसके सामने होती है। लेकिन फिर उसको सोचने लगता है कि स्वर्ग में ऐसा सब नहीं होगा, तो स्वर्ग के लिए चलते हैं, चलो सुख भोग करने के लिए स्वर्ग में जाते हैं। बोले इसमें यहाँ पर क्या है, वहां पर सोम रस का पान कर पाओगे और सुंदर सुंदर अप्सराएं होती है, नंदन कानन में आप घूम सकते हो बगीचे में, और वहां पर यहाँ पर तो आप 100 साल जीते, वहां पर आपको 1000 साल रहने को मिलेगा। तो वो सोचने में, मतलब बात तो सही है, बोले क्यों इसमें फंसे, हायर हायर मुझे अधिक चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये सब फॉलो करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, फॉलो करेंगे। सो वो शॉर्ट टर्म गोल या लॉन्ग टर्म गोल में कर्मकांड में फंसता तो है वो रजोगुण में, लेकिन बाद में क्या होता है, लॉन्ग टर्म जो सैक्रिफाइस, जो स्वर्ग की प्राप्ति वाले है, वो लॉन्ग टर्म सैक्रिफाइसेस होते हैं, क्योंकि उसके लिए तो उसको शरीर बदलना पड़ेगा ना। शॉर्ट टर्म सैक्रिफाइस कैसे थे कि कुछ करो इधर का इधर ही सब मिल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म सैक्रिफाइस में स्वर्ग मिलता है। वो एक स्टेप फर्दर हो गया उसके ऊपर और वो शरीर आत्मा का अंतर समझने लगा। फिर वो संत से सुनता है, वो ब्राह्मण से सुनता है कि स्वर्ग में भी दुख होता है, हैं? अभी तक तो यही बात हो रही थी कि स्वर्ग तो एकदम टॉप है, टॉप लेवल पे वहीं तक, लेकिन अभी जो पृष्ठ का बदल गया बात, स्वर्ग में भी दुख होता है। कैसे? बोले वहां पर भी देवदानों का युद्ध होता है, वहां पर भी आक्रमण होता है। फिर वो समझ सकता है कि स्वर्गलोक में भी भय होता है, भोग तो बहुत करता है स्वर्ग में, लेकिन बाद में बोले इधर भी तो भय है, उधर पहुंच भी गया चलो, तो वो मन में सोचता है कि यहाँ पर भी बहुत भय है। तो वो सोचता है कि मैं अपनी भौतिक इच्छा पूरी करने आया था लेकिन यहाँ पर भी प्रॉब्लम है, फिर भी उसको संतोष प्राप्त नहीं हो रहा है। वो पृष्ठ से सुन रहा है अभी भी, उसको संतोष प्राप्त नहीं हो रहा है। तो फिर वो क्या सोचता है कि भौतिक अस्तित्व में यहाँ पर जहां पर भी जाता हूं मैं, सब जगह समस्या ही समस्या था, ऐसा कुछ हो जाए कि जन्म मृत्यु का चक्र ही समाप्त हो जाए, बोले इधर जाऊं उधर जाऊं उधर जाऊं इधर जाऊं, क्या वापिस ऊपर वापिस नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर यज्ञ करो फिर स्वर्ग में जाओ, फिर नीचे आओ फिर यज्ञ करो फिर स्वर्ग में जाओ, ये सिस्टम में मजा नहीं आ रही है, वहां पर भी प्रॉब्लम है, सब टेम्पररी है, सब मेजरेबल, सब फ्रस्ट्रेटिंग है। तो फिर वो क्या करता है, अब मैं फिलोसॉफी पढ़ूंगा। अब फिलोसॉफी के माध्यम से वो जानेगा कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, अब ये समझना शुरू करेगा। फिलोसॉफी ज्ञान का आधार लेना शुरू किया उसने। अभी वो संत जो पृष्ठ जो ब्राह्मण पंडित जी थे उनसे ये सब सुना, अभी वो शास्त्र पढ़ने लगा, शास्त्र के आधार से समझने का लगा और फिर भौतिक जीवन से अनासक्त होने लगा, फिर भी कर्म कर रहा है ज्ञान के आधार से। अभी उसका जो लक्ष्य है वो स्लोली बदलने लगा, वो क्या सोचने लगा कि ये भौतिक संसार त्याग करके अंत में मुझे परमात्मा में लीन हो जाना है या ब्रह्म में लीन हो जाना है। तो अब मुझे पहले फल त्याग किए थे, अब क्या किया, कर्म भी त्याग कर गए, ये तो यहाँ पर सब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो फिर वो धीरे धीरे फिर कर्म कांड से कर्म योग और कर्म योग से फिर ज्ञान योग के ऊपर जा रहा है। ये सब प्रॉब्लम उसने देख लिया, कर्म कांड देख लिया, कर्म योग देख लिया, अब ज्ञान कांड से एक्शन तक वो आगे बढ़ रहा है, नॉन मटेरियल स्पिरिचुअल जीवन के प्रति सोचने लगा है। अब वो ज्ञान योगी नहीं बना है, ज्ञान कांडी है, अर्थात वो अभी धीरे 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 वो कर्म योगी बन रहा है, ज्ञान का उपयोग कर रहा है, इसलिए निष्काम कर्म योग करने में लगा, ज्ञान का उपयोग किया, कर्म कर रहा है, इसलिए वो निष्काम कर्म योग तक पहुंचा। तो कर्म योगी वो व्यक्ति होता है जो आध्यात्मिक लक्ष्य के प्रति कार्य करता है। एक कर्म योगी होता है ब्रह्मवादी और दूसरा कर्म योगी होता है भक्त, और दोनों में एक होता है सकाम दूसरा होता है निष्काम। ब्रह्मवादी जो होता है वो कभी भी भगवान के भक्त के संपर्क में आकर के भक्त बन सकता है। आपको इस ये जो बता रहा हूँ पृष्ठ वाली बात, और अभी जो इसका योगा लेडर आगे बता रहे हैं हम संक्षेप में, आपको प्रश्न है तो आप नोट कर रहे हैं बिकॉज वी वॉन्ट टू कंटिन्यू द डिस्क्रिप्शन एंड देन वी कैन आंसर द क्वेश्चन। वो बीच में से भक्त बन सकता है। दोनों ही प्रकार के जो कर्म योगी है वो सकाम से निष्काम तक पहुंच सकते हैं, अपने कर्तव्य पालन करके पहुंच सकते हैं। जैसे जैसे उनके साक्षात्कार बढ़ते हैं वो अपने कर्म के फलों से अनासक्त होना सीखते हैं, वो कर्म से अनासक्त होना सीख जाते हैं, और फिर धीरे धीरे वो निष्काम कर्म योग तक पहुंचते हैं और फिर ज्ञान के आधार पर कर्म करना शुरू करते हैं। इस तरह से निष्काम कर्म योग में व्यक्ति ऐसा कंक्लूड करता है कि मेरे कर्तव्य कर्म है, मेरी जो ड्यूटीज है वो मटेरियल रिवार्ड्स देती है, मुझे मटेरियल लाभ देती है, और मुझे भौतिक इच्छा है नहीं, मुझे पुत्र प्राप्ति, धन प्राप्ति, घर प्राप्ति ये सब मुझे नहीं चाहिए, और ना ही मुझे स्वर्ग में जाना है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। अब मेरे पास कोई भौतिक इच्छा रही नहीं, इसलिए अब मुझे कोई भौतिक कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। तब वो ज्ञान में पहुंचता है, ज्ञान योग में आता है, then enters into ज्ञान योग सिस्टम। अभी जो फॉलोइंग जो वर्सेस है 17 से 32 तक, वो इसका वर्णन आता है कि why one freed from material desires should nevertheless perform his sub duties। क्यों ऐसे व्यक्ति को, जिन लोगों को भौतिक इच्छा से वो मुक्त हो चुके हैं, उनको भी कर्म करना चाहिए, क्यों? ये नेक्स्ट चैप्टर में आता है, नेक्स्ट सेक्शन में आता है, बट उससे पहले नाउ यू कैन आस्क क्वेश्चन इफ यू हैव, इसके रिलेटेड तो प्रश्न है। ये जो चर्चा किया वो पृष्ठ वाली बात आपको समझ में आई? पृष्ठ ने स्वर्ग लोक का बताया था, लेकिन स्वर्ग लोक के बाद भी उसको पता पड़ा कि भोग करते हुए थक गया, और वहां पर भी भय मिल रहा है, वहां पर भी दुख है, वहां पर भी ऊपर नीचे होना पड़ता है, आवागमन होता है, तो फिर वो ज्ञान का आश्रय लेने लगा, और ज्ञान के आश्रय लेने के से कर्म का त्याग कर दिया बाद में, तो ज्ञान योग में गया, और ज्ञान योग का आधार लेकर के बाद में फिर आता है अष्टांग योग, कि वो परमात्मा को ढूंढता है अपने भीतर, और इस तरह से अलग अलग प्रकार की विधियों का पालन करके अष्टांग योग को फॉलो करता है, लेकिन वहां पर भी समाधि की जो अवस्था आती है, वो समाधि की अवस्था के बाद उसके पास कुछ नहीं बचता करने के लिए, फिर वापिस कर्म में आना पड़ता है, तो समाधि के बाद जो कर्म होता है वो समाधिस्थ होकर के जो कर्म होता है दैट इज भक्ति योग। तब भक्ति योग की शुरुआत होती है, जो सब प्रकार की इच्छाओं से, कलुषित से, मैल से, सब प्रकार से जब वो मुक्त हो जाता है, फिर वहां भक्ति योग की शुरुआत होती है। दैट इज इन ब्रीफ योगा लैडर। अभी आप समझ गए ना पूरा भगवान का प्लान, कर्मकांड से लेकर के भक्ति योग तक का, ये पूरी सिस्टम भी फॉलो करके जा सकते हैं, या फिर डायरेक्ट लिफ्ट में बैकडोर एंट्री से सीधा भक्ति योग में जा सकते हैं। बहुत चैतन्य महाप्रभु ने ये किया बैकडोर एंट्री, प्रभुपाद ने वो किया बैकडोर एंट्री, सबको बोल कहा जाओगे कर्म कांड कर्म योग ज्ञान योग में, इसे अच्छा है हरे नाम योग, भक्ति योग से जुड़ जाओ सीधा, दैट इज अ शॉर्टकट। यस अच्छा प्रभु, कर्म कांड से कर्म योग की बात हुई, कर्म योग तक, क्योंकि उसमें विष्णु आए ना, विष्णु के लिए कर्म करना है, यज्ञ करने की बात हुई। अभी आगे क्यों इच्छा अगर चली गई है फल की, फिर भी आप कर्म क्यों करोगे, ये बताया गया। यस हाँ यस, कर्म होता है उसमें, कर्म में आसक्त होता है वो, कर्म में आसक्त होता है। हाँ सिंपल, कि अगर मुझे प्रेसिडेंट का सेवा दोगे तो ही मैं सेवा करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। हाँ निष्काम कर्म हुआ, क्योंकि वो उसको सेवा तो भगवान के लिए कर रहा है, इस्कॉन के लिए कर रहा है सेवा, लेकिन कंडीशन अप्लाई होती है उसमें, वो निष्काम कर्म हुआ, फिर भक्ति योग नहीं हुआ, वो कर्म में आसक्त होता है, और कर्मयोगी फल में आसक्त होता है, सकाम कर्मयोगी वो फल में आसक्त होता है, तो सकाम फल में आसक्त होता है, निष्काम कर्म में आसक्त होता है, और भक्ति भक्त जो होता है वो कर्म और फल दोनों से अनासक्त हो जाता है। यस वो आएगा छठे अध्याय में आएगा। We are already running short of time. I can just tell in a brief कि समाधि अवस्था ऐसी अवस्था होती है जिसमें सब प्रकार की भौतिक चीजों से वो मुक्त हो जाता है। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचति न कांक्षति, ऐसे तो इसके ऊपर ऊपर हो जाता है, इसके समाधि सारी इंद्रिया वश में आ जाती है, मन स्थिर हो जाता है, बुद्धि स्थिर हो जाती है, देन ही वो समाधि की अवस्था आती है, तब जाके वो भक्ति योग में स्तर पर। यस ये आप पीछे पहले एक लक्ष्य है भगवान और एक का लक्ष्य है ब्रह्म। नो ब्रह्मवादी कैन बाय एसोसिएशन ऑफ डिवोटी कैन बिकम निष्काम कर ये इसका भक्ति योग में व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट दैट तो हमने ये चर्चा किया था कि अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मवादी भी है वो अगर कभी किसी शक्तिशाली कृपालु किसी भक्त का संग करेगा तो वो ब्रह्म तक पहुंचने का मार्ग छोड़ करके कृष्ण के चरण कमल में अपने आप को स्थिर करेगा। If there is some devotee, उसको हेल्प करे दो ध्यान अदरवाइज ना अदरवाइज वो ब्रह्म वाली सिस्टम में जाएगा फिर ब्रह्म वहां से वापिस ज्ञान योग में जाएगा ज्ञान योग से अष्टांग योग में जाएगा लाइक वो पूरी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा उसको। He is following entire ladder, but he is not following bhakti yoga at that rank. निष्काम कर्म योग से एक रास्ता शॉर्टकट है वहां से लिफ्ट है सीधा भक्ति योग का लेकिन अगर वो वहां से नहीं गया तो इधर से जाएगा ब्रह्मवादी से इधर से जाएगा तो इधर से जाएगा तो क्या होगा उसको अष्टांग योग तक जाना पड़ेगा और अष्टांग योग के बाद भक्ति योग तक फिर से आप समझे एक रास्ता इधर से सीधा जाता है भक्ति योग के लिए और दूसरा रास्ता जाता है वो लैडर को फॉलो करता है वो शॉर्टकट है वो कहीं से भी जा सकता है ना कहीं से भी नहीं कहीं से भी डायरेक्ट बॉटम से भी एनिमलिस्टिक से भी जा सकता है ये पीस डायरेक्ट भक्त बन सकते हैं ऐसा लेकिन वो ब्रह्मवादी वाला जो रास्ता है ना आप वो ब्रह्मवादी को पूरा लैडर फॉलो करना पड़ता है। मोर क्वेश्चन किसी का था ना किसका था
भक्ति योग में जो भक्ति कर रहा है वो भी एक प्रकार का निष्काम कर्म।
भक्ति योग में जुड़ने वाला व्यक्ति शुरुआत में निष्काम कर्म योग करता है लेकिन धीरे धीरे उसका आचरण करने से फिर वो भक्ति योग में बदलता है। अधिकतर हमारे इस्कॉन के भक्त भी निष्काम कर्म योग में ही आते हैं क्योंकि कर्म में आसक्त होते हैं इसलिए निष्काम कर्म योग में उसकी वो वृत्ति तो रहेगी क्योंकि निष्काम कर्म योग में दो प्रकार के बताया ना निष्काम कर्म योगी एक भगवान वाला है और एक ब्रह्मवादी वाला है
तो ब्रह्म
नहीं जब तक वो भक्ति एक ही ऐसा मार्ग है कि जो हमेशा रहता है बाकी आप ज्ञान योगी का भी पतन हो सकता है वो नीचे गिर सकता है लेकिन भक्ति योगी का पतन नहीं होगा। भक्ति क्योंकि वो डायरेक्ट भगवान से जुड़ी हुई है इसलिए वो शाश्वत है लेकिन बाकी जितने भी मार्ग है उसमें अगर पतन होता है तो वो एकदम ग्राउंड लेवल तक जा सकता है वो जा सकता है लेकिन भक्ति योग में क्या है कि आपने चार माला या आठ माला वाला प्रोग्रेस किया है तो आपकी रक्षा हो जाएगी कि वो डिलीट नहीं हो पाएगा वो रहेगा हमेशा नहीं वो जा सकता है नीचे। यस पॉसिबल है ऐसा नहीं कि वो अभी अष्टांग योग तक पहुंच गया मर गया बीच में तो आगे क्या होगा कि नहीं ऐसे नहीं अगर वो मर जाता है तो उसको चांसेस है कि वो गिर जाए चांसेस है। दो प्रकार के पतित लोग होते हैं वो छठे अध्याय में आता है नहीं इसमें छठे अध्याय में आता है कि पतन हो जाता है तो दो प्रकार के लोग एक होता है किसी शुद्ध ब्राह्मण के घर में या फिर एक होता है धनवान के घर में ऐसा है ना वो छठे अध्याय में उसका आता है कि वी विल टॉक इन डिटेल अबाउट दैट कि क्या होगा उसका बीच में अटक गया तो
डायरेक्ट
ना ना कहीं से भी, जैसे प्रभुपाद ईपीओ को उद्धार किया तो वो लोग तो योगा लेवल में कहीं पर भी नहीं थे, पास्ट लाइफ में थे, उसका प्रभुपाद ने कहीं पर मेंशन नहीं किया कि आप योगा लेवल में ऐसे थे। मीन्स प्रभुपाद ये प्रस्थापित कर रहे हैं इस माध्यम से कि भक्ति योग आप किसी भी जगह से शुरू कर सकते हो। भक्ति योग कर्मकांड के नीचे एनिमल पशु भी तो, प्रभुपाद ने चैतन्य महाप्रभु ने कुत्ते को अभी उद्धार कर दिया, आप बताओ वो तो बिचार कहां योगा लहर में जाएंगे, वो तो कर्मकांड तक जा ही नहीं सकते, बट उद्धार कर दिया उनका भी। हाँ ना ना ऐसा नहीं, भक्त का संग और भगवान की कृपा ये दोनों ही किसी भी कारण के बिना प्रस्तुत हो सकते हैं, किसी भी कारण के बिना, उनको कोई बंधन नहीं है। हाँ उनके नियम नहीं है उसमें, योग्यता उनके लिए कोई नियम नहीं है, लेकिन भक्ति सुकृति जो होती है वो आता है, वो है भगवद गीता के डिस्कशन में, भक्ति उन्मुखी सुकृति, अर्थात कुछ ऐसे कार्य कर जैसे इस्कॉन संस्था अच्छा कार्य कर रहा है, लेकिन बस इतने से हो गया उसका, वो अपने घर वो इस्कॉन अपने वो ऐसे, तो सुकृति इकट्ठा हुई, ऐसी भक्ति उन्मुखी सुकृति इकट्ठा हुई, लव मात्र साधु संघ कहीं पर, लव मात्र साधु संघ हो गया बस, तो वो सुकृति आ गई और फिर वो व्यक्ति को भक्ति में जुड़ेगा। जैसे कई लोग होते हैं आपके रिश्तेदार होते हैं, उसको आपने प्रसाद खिलाया लेकिन वो भक्त नहीं है, वो कभी आते भी नहीं, उसका मृत्यु हो गया, लेकिन आपके यहाँ प्रसाद खाया था, आपके घर पे दो बार हरे कृष्ण बोला था, या कुछ उसने कुछ का अच्छे काम किए थे, आपको सहायता की, वट एवर, राइट, तो अभी उसका क्या होगा, उतना किया उसकी सुकृति इकट्ठा हुई तो उसको दूसरे का अवसर दिया जाएगा, मनुष्य का, ठीक है मनुष्य बन जाओ और तुम भक्ति में जुड़ो, इस तरह से अवसर दिया जाएगा। लाइक दैट माला, हाँ क्यों करेगा वो, माला करेगा और कर्मकांड करेगा, ऐसा क्यों करेगा? अगर समझ लो कोई व्यक्ति कर्मकांड कर ही रहा है तो वो कर्मकांड करने का उद्देश्य क्या होता है, कि फल की प्राप्ति है, उसको फल चाहिए, तो भले ही माला का जप कर रहा है लेकिन वो व्यक्ति तो कर्मकांडी या फिर सकाम कर्मयोगी माना जाएगा, क्योंकि उसका वो फल में आ सकता है लेकिन वो नियम के अधीन रहना चाहता है। माला कर रहा है इसका अर्थ क्या हुआ, कि भगवान उसके लाइफ में आए, और कर्मकांडी वो होता है कि जो लाइफ भगवान उसके लाइफ में नहीं है, तो कर्मकांड और कर्मयोग में अंतर क्या है, कि वो हायर अथॉरिटी को मानने लगता है, देवताओं को मानने लगता है, भगवान को मानने लगता है, तो फिर वो कर्मकांड से फिर वो कर्मयोग तक आ जाता है। यस एनीबडी कैन कम इन एंटर इन टू भक्ति योग, नो इवन जो पशु जैसे होते हैं वो कर्मकांड को भी नहीं जाना पड़ता, उनको निष्काम कर्मयोग भी नहीं करना पड़ता, वो सीधा ही जा सकते हैं भक्ति योग में। भक्ति योग की ये सुविधा है, बच्चा भी हरे कृष्ण बोल सकता है ना, बच्चा भी नाम कीर्तन कर सकता है, तो उसको तो ज्ञान है ही नहीं, फिर भी भक्ति योग केवल भगवान की सेवा करने से, सुनने से, केवल अब तो केवल श्रवण करने से भक्ति योग हो सकता है, केवल श्रवण करने से आप भगवान के डायरेक्ट भगवान के संपर्क में जाते हो, फिर ये बीच में कुछ नहीं जानना पड़ता, डायरेक्ट भगवान के संपर्क में। फिलोसफी समझेगा वो, और भगवद गीता भी समझेगा, लेकिन उसको ये प्रोसेस से नहीं जाना पड़ेगा, कर्म कर्मकांड कर्मयोग निष्काम कर्म इस सब में से नहीं जाना पड़ेगा उसको। देखो भक्ति योग का अर्थ ये नहीं होता है कि अगेन सेंटिमेंटल सिद्धांत की बात नहीं करना, जैसे हमने शुरू की में चर्चा किया, भक्ति योग का अर्थ होता है कि वो भगवद गीता के आधार से भगवान की शरण में आता है, विम्जिकली नहीं भक्ति योग कर रहा है। भक्ति योग का साइंस पूरा 9 अध्याय से 7वें अध्याय से आता है कि भक्ति योग कैसा होता है, then you will understand what भक्ति योग is, but actually what we are doing is beginning of भक्ति योग only, हम भक्ति योग की शुरुआत में लगे हैं। कि हम साधन भक्ति में है, सोलह माला जप करना, श्रवण करना, कीर्तन करना, दिस ऑल पार्ट ऑफ भक्ति योग। आपका लक्ष्य क्या है? कृष्ण। लक्ष्य क्या है? जीवन में भगवान की सेवा करना, ये लक्ष्य। इसलिए भक्ति योग में लोग इससे जाओ, अगर कोई बुलाता है तो जाओ, क्या प्रॉब्लम? कोई बुलाता है तो जाओ। आएंगे, बुलाओ, इन्विटेशन भेजो, आएंगे क्यों नहीं आएंगे? हम जाएंगे उधर, अगर इन्विटेशन देंगे तो अवश्य जाएंगे, लेकिन हम अपनी इच्छा से नहीं जाते, क्योंकि हमारे उधर काम नहीं है कुछ, वहाँ पर वो ट्रस्टी के लिए हम जा रहे हैं, समझे ना? ऑफ कोर्स, देवता हमसे तो हायर ही है ना। बारिश बरसाते तो इंद्र ही बरसाते, मैं तो बरसा, हम तो बरसाते नहीं ना बारिश, तो भाई इंद्र ही बरसाते, लेकिन वो भगवान का आदेश के अनुसार बारिश बरसता था। देयरफॉर वी डायरेक्ट गो टू द रूट ऑफ द ट्री, वृक्ष के मूल पे जाते हम, पत्तों पे नहीं जाते। लेकिन वो उसको नहीं पता कि मूल क्या है, पत्ता क्या है, ट्रस्टी को वो बोलता है कि कभी कभी पत्ते पे भी आ जाओ। हाँ आ जाएंगे, बुलाओ, पत्ते में भी आ जाएंगे। यस हो,
जैसे कोई देवी देवता मान के ही कृष्ण की पूजा करता है, उसको कौन सा
भगवान को देवता मान के कर रहा है? इज इट ओके इफ वी डिस्कस दिस पॉइंट व्हेन कृष्ण स्पीक अबाउट दिस? आई मीन वी कैन टॉक एंटायर भगवद गीता हियर, बिकॉज इट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ कनेक्टेड टू भक्ति योग। आपका प्रश्न उचित है, मैं आई डोंट डिनाई, आपका प्रश्न उचित है, लेकिन अगर वो प्रश्न को हम जब भगवान इस बात को छेड़े तो डिटेल में उस पर चर्चा करें तो अच्छा है ना, बिकॉज कृष्ण पर्सनली आंसर अबाउट दिस, सो वी वेट फॉर दैट, आई थिंक दैट्स बेटर। इसलिए मैं देखा, नोटिस किया कि हमारे जो भक्त इस बैच में है वो सारे भक्त पढ़े लिखे शास्त्र को, तो इसलिए परिणाम क्या होता है कि उनके प्रश्न सीधे सेकंड मॉड्यूल में जाते, थर्ड मॉड्यूल के होते हैं। जब प्रश्न आते सीधे सेकंड मॉड्यूल के क्वेश्चन, थर्ड मॉड्यूल के क्वेश्चन होते हैं। तो अभी आई कैन ट्राई टू आंसर एवरीथिंग, अभी सेकंड मॉड्यूल का आंसर, थर्ड मॉड्यूल, सब आंसर आई कैन ट्राई, लेकिन इट इज बेटर व्हेन गो इन अ प्रोसेस, यू नो, दैट्स फाइन, आई मीन सॉरी डोंट माइंड इट, बट आई मीन दिस इज द वे, राइट? सो वी कैन हैव अ स्मॉल एक्सरसाइज और एनी मोर क्वेश्चन? हाँ, एक्सरसाइज तो बहुत छोटा है, small exercise. You can have a small exercise. No. एक तो हम ओके हम आपको आप में दो ग्रुप बनाते हैं और आप में दो ग्रुप बनाते हैं। तो आई रिक्वेस्ट पद्म सेवा माता जी एंड गोकिला माता जी, आप डिवाइड करने में हेल्प कीजिए, और यहाँ पर नंदन आचार्य प्रभु और सेवा क्या गिरधारी, सत्य गिरधारी है ना, आप दोनों ये हेल्प कीजिए डिवाइड करने में, दो ग्रुप बनाने में। जिन लोगों की भौतिक इच्छाएं पूरी हो गई है, अर्थात मुक्त हो गए हैं भौतिक इच्छाओं से, जो मुक्त हो गए हैं सब प्रकार से, देखो इच्छा पूरी होना अलग होता है और मुक्त होना अलग होता है, तो जो सभी प्रकार के भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो चुके हैं, उन लोगों को क्यों अपने नियत कर्तव्य का पालन करना चाहिए? Why one freed from material desire should nevertheless perform his prescribed duties? Why? Now, let's go text number 17 and 18 together.
किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं होता। लेकिन स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रह जाती।
यस, तो यहाँ पर आत्मरति लोगों की बात हो रही है। आत्मरति अर्थात सेल्फ सेटिस्फाइड, अर्थात ये लोग जो होते हैं वो आत्मा में आनंद लेते हैं। ये लोग ज्ञानी होते हैं, अर्थात ज्ञान उनको पता है, शरीर आत्मा का अंतर भी जानते हैं, लेकिन उन लोग को किसी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं अपने आप को संतुष्ट होने के लिए। उनको अपने कर्तव्य कर्म में अगर नुकसान होगा या लाभ होगा इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दे आर ओके फॉर बोथ लॉस एंड गेन, बोथ उसके लिए, और ना ही वो किसी प्रकार के व्यवधान से विचलित होते हैं क्योंकि वो शरीर के लेवल पे काम नहीं कर रहे, वो आत्मा के लेवल पे काम कर रहे। तो इस तरह से ये दोनों ही आत्मरति, हमें दोनों श्लोक आत्मरति लोग के लिए है। उनको कोई इच्छा नहीं रहती क्योंकि वो फल की आसक्ति से भी मुक्त है, वो ज्ञान के आधार को देखते हैं। आज आत्मरति का एक एग्जांपल देख सकते हो आप, ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं, जैसे सुखदेव गोस्वामी। प्रभुपाद तात्पर्य में एक जगह बताया था, लेक्चर प्रपट में एक जगह प्रभुपाद बता रहे है टू लेक्चर्स इसमें प्रभुपाद बताया है कि हाउ कैन वी टेक प्लेजर इन सेल्फ, हम अपने आप में कैसे आनंद अनुभव कर सकते हैं। इफ यू एसोसिएट विद जॉयफुल सोसाइटी, अगर आप किसी प्रसन्न लोगों से मिलोगे तो आप प्रसन्नचित हो जाओगे, किसी दुखी के पास जाओगे तो आप दुखी हो जाओगे। प्रभुपाद गिव्स दिस एग्जांपल, बाय एसोसिएशन यू विल डू दैट। You associate with the supreme joyful Krishna, you automatically become supremely joyful. तो फिर आपको फिर किसी बाह्य वस्तु से सुखी होने की आवश्यकता नहीं है। My identity is I am eternal servant of God. I am soul. As soon as I engage myself in the service of God, then I am my self-realization. तो इस तरह से व्यक्ति बढ़ सकता है आत्मरति में। और सुखदेव गोस्वामी जब वो गर्भ से बाहर आए, वो जा रहे थे ये परीक्षित महाराज वहां जहाँ स्थान जो है नैमिषारण्य, उधर जा रहे थे सुक्ताल, तो वहां पर वो जा रहे थे। तो जाते समय वो 16 साल के नौजवान पुरुष लड़के जैसे दिख रहे थे और उनके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, पूरे नंगे थे। और वो जहां से जा रहे थे वो वहां पर एक सरोवर था, तालाब, और उसमें सब निर्वस्त्र कन्याएं स्नान कर रही थी। तो जैसे ही सुखदेव गोस्वामी वहां से गए तो उनको देख करके इनको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि जैसे अगर समझ लो कि माताएं स्नान कर रही है, महिलाएं स्नान कर रही है, और वहां से कोई छोटा 2 साल का बच्चा गुजरता तो आपको थोड़ी कोई परेशानी आती, आपको लज्जा नहीं आती उसमें, ठीक है, दैट्स फाइन, बच्चा है 2 साल का, क्या करोगे, उसके मन में कोई विकार नहीं है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी को देख करके इनको ऐसा ही लगा कि ये तो बिल्कुल बच्चे जैसा है, क्योंकि वो आत्मरति थी, वो आत्मरति व्यक्ति, उनको कोई विकार नहीं, कुछ नहीं। वो सीधे सीधे चले गए अपने स्थान पे, उनको पीछे पकड़ने के लिए दौड़कर उनको ढूंढते ढूंढते व्यासदेव आ रहे थे। व्यासदेव तो पूरे कपड़े वपड़े सब पहने हुए थे, लेकिन व्यासदेव उस अवस्था तक नहीं पहुंचे थे, सुखदेव गोस्वामी की अवस्था तक। तो जैसे व्यास को देखा सब ने अपने अपने वस्त्र पकड़ लिए, सब अपने अपने शरीर को ढक दिए। तो ये आत्मरति शब्द इस प्रकार के लोग होते हैं कि जिनको भौतिक कोई चीज से उनको आनंद की अपेक्षा नहीं है। दे आर नॉट लुकिंग फॉर एनी हैप्पीनेस फ्रॉम आउटसाइड थिंग्स, दे आर आत्मरति। बट प्रभुपाद से डोंट ट्राई टू बिकम सुखदेव गोस्वामी, आप सुखदेव गोस्वामी बनने का प्रयास मत करना। He can only do that. We cannot do that. So, चैतन्य महाप्रभु भी इसके विषय में और प्रभुपाद इसके विषय में दूसरा एक एग्जाम्पल ये भी दिया कि हम अभी बोरिस स्ट्रीट पर बैठे हैं और डस्ट आती रहती है कमरे के अंदर, इस तरह से हमारे हृदय में बहुत सारी डस्ट आती है, बहुत सारी लेयर्स मटेरियल कंटेमिनेशन के आते हैं, लेकिन ये सारी डस्ट जो है वो शरीर, मैं शरीर हूँ इसके कारण होता है। जैसे मैं शरीर हूँ ये भाव चला जाता है तो वो आत्मरति बन जाता है, आत्मरति बनने के बाद वो इस डस्ट से मुक्त हो जाता है सब प्रकार की डस्ट। टेक्स्ट नंबर 19 में कंटिन्यूएशन में इसके विषय में बताया है। नेक्स्ट वर्स जो है वो ऐसे व्यक्ति को कर्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वो बताया है। पढ़िए 19 भी साथ में पढ़ लो। और 20
जनक जैसे राजा ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से उन्हें कर्म करना चाहिए।
हाँ, अभी भगवान कह रहे हैं कि फल से आसक्त हुए बिना उसको कर्तव्य समझ करके ऐसे कर्म करने से परमेश्वर की प्राप्ति होती है। कर्म फल से आसक्त हुए बिना कर्म करने से, ऐसे कर्म करने वाला वास्तव में श्रेष्ठ माना जाता है कर्मयोगी, ऐसे उसको कर्मयोगी माना जाता है कि जो फल में आसक्त हुए बिना कर्म करता है। अर्थात आसक्ति के बिना अगर कर्म किया जाता है तो उसको वैराग्य कहा गया है, आसक्ति के बिना कर्म करते तो उसको वैराग्य कहा गया है, और ये वैराग्य ज्ञान से प्रकट होता है। अभी भगवान एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर बताते हैं साधु प्रमाण, अलग अलग प्रमाण होते हैं, इसमें ये साधु का प्रमाण दिया है। क्या है साधु का प्रमाण? जनक महाराज। तो जनक तो ऐसे बहुत सारे जनक हुए, जानकी के पिता जनक, उनकी इस वंश में बहुत सारे जनक, सभी को जनक ही बोलते हैं, लेकिन नाम अलग अलग होते हैं, लेकिन जनक एक पोजीशन है। जनक महाराज कैसे तो वो सबसे बड़े कर्मयोगी में उनका नाम आता है जनक महाराज का, ऐसे तो उनके विषय में कैन डिस्क्राइब राइट नाउ एवरीथिंग। एक छोटा सा एग्जांपल उनका बताते हैं वो जो वी हैव इजीली मैच होता है इसके साथ। जनक महाराज कैसा था कि वो एक बार उनके वहां पर महल में इस पर भागवत सुनने के लिए ब्राह्मण लोग आते थे, साधु लोग आते थे, और उसका एक लीडर होता था गुरु उनका, वो भी आते थे और वो वक्ता के रूप में वो भागवत सुनाते थे, और जनक महाराज रोज प्रतिदिन उनके पास बैठ करके सुनते थे भागवत। तो एक बार क्या हुआ कि भागवत का टाइम हुआ, वो शायद फॉर एग्जांपल शाम को 5 बजे सुनते होंगे, तो एक बार ऐसा हुआ कि 5 बजे भागवत के लिए सब संत लोग इकट्ठा हो गए, ऋषिगण और वक्ता भी थे, लेकिन जनक महाराज नहीं आए थे। तो जनक महाराज के किसी सेवक को भेजा पूछने के लिए कि यू फाइंड आउट कि जनक क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि वो कुछ कार्य में व्यस्त है, और उन्होंने कहा कि वो थोड़ी देर में आएंगे, वो थोड़ा कुछ काम किसी को समझा रहे कि ये तुम करो वो तुम ये करो तुम ये करो, ऐसे सब किसी को समझा रहे, तो थोड़ी देर के बाद आएंगे। तो कुछ ऐसे संत लोग थे उधर बैठे थे, वो सोचे, वक्ता को कहा कि महाराज आप कथा शुरू करो आ जाएंगे महाराज। तो वक्ता ने कहा कि नहीं थोड़ी देर वेट करते हैं, जनक महाराज आएंगे तब बाद में चर्चा शुरू करो। तो कुछ आपस में सोचने लगे, बोले देखो ये अपना इनको डोनेशन मिलता होगा राजा से, राजा इनको संभालते हैं, इधर राजा का वेट करने के लिए बैठ गए, ये ऐसा ही है इनके आचरण में, ऐसा सब बोलने लगे। थोड़ी देर के बाद जनक महाराज आए उधर, और ये बात उनके चेहरे से पता पड़ गई इनको, गुरु तो समझदार होते, तुरंत बात को देखकर ही समझ गए कि इनके मन में ऐसा शंका हो रहा है कि मैं इनसे डोनेशन लेता होऊंगा इसलिए इनके लिए वेट कर रहा हूँ। तो बाद में जनक महाराज आया, कथा शुरू हुई बीच में एक मिनिस्टर एक आदमी आया जनक महाराज के पास आकर कहा कि महाराज क्षमा करना, एक समस्या है। तो जनक महाराज बीच में बीच डिस्कशन में जनक महाराज ने कहा क्या है, तो उन्होंने कहा कि आपका फलाना वाला कोई जो ट्रेजर था वो जल के भस्म हो गया, वहां पर आग लग गई है। तो क्या हुआ, जनक महाराज ने उसको बोले इधर आओ, फिर उसको बता दिया देखो यहाँ पर इसको मिल लेना, यहाँ पर उसको मिल लेना, ये कर लेना वो कर लेना और काम खत्म कर। बोले महाराज आप नहीं आएंगे, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया है तो आप नहीं आएंगे। बोले नहीं मैं भागवत सुन रहा हूँ, जाओ। वो सब लोग देख रहे हैं जनक महाराज भागवत सुन रहे, अरे उसको वापिस भेज दिया। और थोड़ी देर के बाद एक व्यक्ति आया, बोले तुम्हारे गुरुकुल में ये संत लोग जो बैठे थे ना, तुम्हारे ऋषिगण का जो कॉटेज था वो कॉटेज में आग लग गई, वहां की वो आग फैलती फैलती कॉटेज तक चली गई और तुम्हारे सबके कॉपिन, तुम्हारे कपड़े धोती सब कुछ जो सूख रहा था सब जल के बस, और सारे ऋषि उठ करके भाग गए, जितने भी संत यहाँ पर बैठे थे सब उठ करके भाग गए। तो दिस इज वॉट कर्म योगी मीन्स। जनक महाराज का उदाहरण वो गुरु ने दिखाया कि जितनी तीव्रता भागवत सुनने की जनक महाराज को है उतनी तुम लोगों में भी नहीं है, लेकिन वो कर्मयोगी है, वो निष्काम भाव से कर्म अपना अपने कर्तव्य को पूरा करते हैं, पालन करते हैं और सिस्टम से काम करते हैं, नहीं देखो उसका परिणाम। दैट वॉज देयरफॉर भगवान ने प्रमाण दिया, एग्जाम्पल देना पड़ता है, प्रमाण देना पड़ता है। तो भगवान ने खुद एक प्रमाण दिया, जनक आदाय भगवान दो प्रमाण दे रहे हैं, एक जनक राजा का एग्जाम्पल दिया, अब अपना प्रमाण देंगे। देखो सेकंड टेक्स्ट नंबर 21 आया ना, पढ़िए 21 और 22 साथ में पढ़ लीजिए।
महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं, वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। हे पृथक उत्तर, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, न मुझे किसी वस्तु का अभाव है न आवश्यकता है, वो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ।
यस सो ये बड़ा अच्छा श्लोक है, यद यद आचरति श्रेष्ठ, जो बड़े महान लोग जो करते हैं साधारण तरह से, हमारी एक मेंटालिटी होती है साधारण मेंटालिटी कि अगर मुझसे कोई ज्यादा क्वालिफाइड है तो क्या होगा इसका परिणाम कि मैं उनको फॉलो करने का प्रयास करूंगा, क्वालिफाइड व्यक्ति को। अगर मुझसे कोई अच्छा व्यक्ति दिख रहा है तो मैं तुरंत उसके ज्वाइन कर लूंगा, ऐसे सब जगह ऐसा मेंटालिटी था। और उसमें कई बार हम ये भी नहीं देखते कि ये मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो भी हम नहीं देखते कई बार। हमको ऐसा लगा कि ये सक्सेसफुल आदमी है तो हम इसको फॉलो कर लेते हैं। तो जो श्रेष्ठ लोग होते हैं उसको सब फॉलो करते हैं। ब्रांड एम्बेसडर सिस्टम नहीं, ब्रांड एम्बेसडर तो एक सेलिब्रिटी को बता देंगे, बोले मैं इस कंपनी का जूता पहनता हूँ, ब्रांड तो सब लोग पीछे पड़ेंगे, हाँ हम भी उसी कंपनी का जूता पहनेंगे। सबको पता है कि इसको पैसा मिल रहा है, फिर भी मार्केटिंग स्टंट यही है ना, स्ट्रेटेजी। तो जो श्रेष्ठ लोग करते हैं वो आचरण सब लोग करते, अर्थात भक्त लोग के आचरण को सब लोग देखते हैं। इसलिए हमें प्रचार के लिए आचरण को बहुत ध्यान में रखना चाहिए। आपकी आचरण में त्रुटि आई तो जिसको आप प्रचार कर रहे हो ना उसको आप कितना भी लेक्चर दे दो, कितना भी अपराध का पूरा भय दिखाओ, तलवार दिखाओ अपराध नाम की, वैष्णव अपराध या कुछ भी, वो व्यक्ति आपसे प्रभावित नहीं होगा। अगर आपके आचरण में त्रुटि आएगी तो आपके सामने दंडवत करेगा, आपको हाथ जोड़ेगा, आपका आदर करेगा, लेकिन आपसे प्रभावित क्यों ऐसा, क्योंकि आचरण ही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जो श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं सब लोग उसको फॉलो करते हैं। तो यदि आचरति श्रेष्ठ, उसी के आचरण को, इसलिए सनातन गोस्वामी के विषय में कहा जाता है, हरिदास ठाकुर की चर्चा में क्या आता है, कुछ लोग आचार करते कुछ लोग प्रचार करते, लेकिन आप आचार और प्रचार दोनों करते हो इसलिए तुम श्रेष्ठ हो। आचरण एक्शंस आर लाउडर देन वर्ड्स, है ना, हम बात कुछ और कर रहे हैं कार्य कुछ और हो रहा है, तो एक्शंस आर लाउडर देन वर्ड्स। आप क्या करते हो ये सब कुछ बोल देता है, आपका आचरण ही सब कुछ बोल देता है, आपको कुछ क्लैरिफिकेशन देने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, सामने वाला अपने आप समझ जाता है। इसलिए हमारे आचरण में हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर आचरण नहीं आता है तो सीखना चाहिए, अगर हमारे आचरण में त्रुटि भी आ जाती है तो उसको करेक्ट कर लेना चाहिए। और अपने आचरण में त्रुटि को करेक्ट करना ये ऑनेस्टी है, प्रामाणिकता है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं होनी चाहिए। अगर आप उसको अपनी त्रुटि को स्वीकार करके उसको सुधारते हो तो सामने वाला व्यक्ति आपका आदर करेगा, आपको आपसे प्रभावित होगा। इसलिए जो लीडर होता है वो इम्प्रूवमेंट, सजेशन, करेक्शन, गाइडेंस, डायरेक्शन, इस सब के लिए रेडी होना चाहिए। आप समझे, लीडर्स उसको ही बोलते हैं जो इम्प्रूवमेंट या करेक्शन के लिए अपने आप को प्रस्तुत करता है। आप सामने से पूछेगा, आप मेरी कोई गलती है तो मुझे बताइए, मुझे करेक्ट करना, आप यू हैव फुल फ्रीडम, आप करेक्ट कर सकते हो मुझे, वही लीडर बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता लीडर। अगर आप कोई भी लीडर है वो करेक्शन से परेशान हो जाता है, गाइडेंस उसको देते तो अभिमान नष्ट होता है, और उसको इम्प्रूवमेंट का कुछ बताते हो तो वो आपको सामने इम्प्रूवमेंट बताता है, डिफेंड करता है। इस प्रकार का कोई व्यक्ति होगा ना तो वो लीडर बन नहीं पाएगा। ठीक है, वो अपने आप को लीडर मान लेगा लेकिन वो बन नहीं पाएगा। कुछ समय के पश्चात उसको सुनने वाले जो लोग है उसकी संख्या धीरे 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 कम हो जाएगी और फिर वो अकेला हो जाएगा। ये ऐसा होता है, ये सब जगह वी शुड अंडरस्टैंड दैट लीडरशिप। तो भगवान यहाँ पर क्या बताया कि सब उसको फॉलो करते हैं, एंड वॉट एवर एक्शन, सॉरी टेक्स्ट नंबर 22 में क्या था कि देयर इज नो वर्क प्रिस्क्राइब फॉर मी। मेरा उदाहरण दे लो, आई एम द बेस्ट लीडर, कृष्ण सेज, मुझे कोई कार्य करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तीनों लोक में, ऐसा नहीं कि किसी और, तीनों लोक में त्रिशु लोक है सुकिंचना ना, वो मुझे किसी चीज की प्राप्ति करने की इच्छा नहीं है, ऐसा कोई है नहीं कि मुझे प्राप्त करना पड़े, और फिर भी मैं अपना कर्तव्य कर्म करता हूँ। तो कृष्ण स्वयं भगवान होकर के अपना उदाहरण दे रहे हैं, अपनी इच्छा मात्र से सृष्टि को प्रकट करते हैं और इच्छा मात्र से सृष्टि का नाश कर देते हैं, उनको किसी कर्तव्य की रिक्वायरमेंट नहीं है फिर भी कर्तव्य करते हैं। So therefore, even though you are established in knowledge, even though you may be atmarati, फिर भी आपको अपने निजी कर्तव्य कर्म करने चाहिए। किसके लिए करने चाहिए? To set an example for others, दूसरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए we should do the activity. कई बार होता है चैतन्य महाप्रभु तर्पण क्रिया किया, क्यों किया? अगर वो नहीं करेंगे तो सब लोग बोले उन्होंने तो किया ही नहीं था। ऐसे प्रभुपाद सब जगह आप देखो, भक्त लोग भी कई बार कुछ कार्य ऐसे करते हैं उनको कोई आवश्यकता नहीं है सब करने की, लेकिन अगर उनका उदाहरण लोग फॉलो करेंगे जो लोग भक्त नहीं है या फिर जो अनजान है, जो इस भागवत पूरी तरह से जुड़े नहीं है, तो इसलिए उनको फॉलो करना पड़ता है। इस तरह से भक्ति के लाइफ में भी, आप मंगल आरती में रोज आओगे तो अपने आप आएगा दूसरा भक्त, लेकिन आप खुद ही मंगल आरती में नहीं आओगे, आप उसको बोलोगे तुम मंगल आरती में रोज क्यों नहीं आते, तो वो उससे प्रभावित नहीं होगा, उससे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए आचरण सबसे उत्तम है। प्रभुपाद रात को 3:30 बजे खुले शरीर में 70-75 साल की आयु में गंगा में ठंडे पानी से नहाए थे, ये हरिद्वार में कुंभ मेला में, बस इतना सुन के ही सब बंगला में हाजिर, इतना सुन के ही। सो वी लर्न बाय बिहेवियर ऑफ सेंटली पीपल। तो टेक्स्ट नंबर 121 और 122 में इस बात की हुई चर्चा। इफ यू डोंट माइंड आई जस्ट टेक टू मोर श्लोकास इन 5 मिनट्स, ओनली 5 मिनट्स, 23 और 24 पढ़िए।
यदि वे नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करो तो हे पार्थ, ये निश्चित ही है कि सारे मनुष्य मेरे पद का अनुमोदन करेंगे।
और 24,
यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाए, तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संकट को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाश होगा।
हाँ, नाउ दिस सेक्शन इज कंप्लीट। तो ये पर्टिकुलर ये बात को भगवान ने यहाँ पर समाप्त किया। यहाँ पर भगवान के लिए प्रभुपाद तात्पर्य कहते हैं कि उनके लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, लेकिन वो धर्म की स्थापना करने के लिए साधारण रूप से कर्तव्य कर्म करते, उनको कोई, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो फिर लोग उनको फॉलो करेंगे, जैसे वो तो भगवान है उनको कुछ नहीं चाहिए तो वो सब कर देंगे, तो वो तो भगवान ने भी तो ऐसा किया था, भगवान ने भी तो, कई लोग होते हैं कि भगवान के अनुकरण करना चाहते हैं और कुछ लोग अनुसरण करते हैं। तो जनरली एक सिस्टम बताया है कि कृष्णा का अनुकरण नहीं हो सकेगा और राम का अनुसरण करना चाहिए, कृष्ण का अनुसरण करना चाहिए। अनुसरण और अनुकरण दो अलग अलग है, अनुसरण मीन्स फॉलो व्हाट दे से और अनुकरण मीन्स 16,108 विवाह हुआ तो मैं भी 16,108 विवाह करूंगा। एक था एक व्यक्ति, एक राजा था हैदराबाद में, उसने 300 शादी की थी और उसका था कि जितना नंबर बड़े बढ़ाऊं, लेकिन उसका कंपटीशन में था कृष्ण, मर गया बाद में, 300 शादी की थी उसने। तो एक ये होता है अनुकरण, जैसे गोपियों के साथ भगवान रासला किया, लेकिन वही गोपियों को बचाने के लिए गोवर्धन भी उठाया था, आप उठा पाओगे? इसलिए अनुकरण नहीं हो सकता है, अनुसरण हो सकता है। तो हमें अनुसरण करना चाहिए, और अगर मैं नहीं करता ये तो वर्ण शंकर को जन्म देने वाला बनूंगा। अर्जुन तुम क्या कह रहे थे, तुम युद्ध करोगे तो वर्ण शंकर होगा, लेकिन मैं कहता हूं कि तुम युद्ध नहीं करोगे तो वर्ण शंकर होगा, लोगों लोग तुम्हारा उदाहरण लेंगे। अर्जुन तुम हीरो हो और लोग तुम श्रेष्ठ लोग में आते हो, इसलिए तुम शायद इतने उच्च प्रकार के मनुष्य होने के कारण हो सकता है कि तुम वन में जाके काम कर भी लो, लेकिन तुम्हारा उदाहरण ऐसे लोग फॉलो करेंगे जो तुम्हारे जितने शक्तिशाली नहीं है, तुम्हारे जितने एडवांस नहीं है, तो वो तो बेचारा जाएगा अनुकरण करने और मरेगा पिटेगा। इसलिए लोगों के लिए अपने कर्तव्य कर्म करो, लोगों के एग्जाम्पल प्रस्तुत करने के लिए ये फॉलो करो। सॉरी आई एक्सटेंडेड, वी स्टॉप हियर, 24 तक हमने किया, बट वील हैव ओनली वन मोर लेक्चर ऑन थर्सडे बिफोर जन्माष्टमी, देन वी विल हैव अ ब्रेक। जन्माष्टमी के बाद हम ब्रेक लेंगे, तो हमारा टारगेट रहेगा कि हम तीसरे अध्याय तक में जितना हो सके समाप्त कर दें, विल टारगेट अपॉइंट।